ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कान वृंदावन में प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में आप सबका स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पांचवें स्कंद के दसवें अध्याय में पांचवें श्लोक का आज श्रवण वर्णन करेंगे। दसवें अध्याय में ये प्रसंग चल रहा है असल में स्वयंभू मनु के ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत के वंश का। प्रियव्रत के वंश में आगे भगवान ऋषभदेव, फिर ऋषभदेव के सौ पुत्रों में बड़ा महाराज भरत, और फिर महाराज भरत के तीन जन्मों का वर्णन चल रहा है। राजा होते हुए राजपाट छोड़ के पुलह आश्रम में गंडकी नदी के किनारे तपस्या करने गए, फिर भी हृदय में दया आई, गर्भवती हिरण को शेर के धारने से नदी कूदते हुए प्राण त्यागते हुए बच्चे को जन्म दिया। छोटा बच्चा हिरण का जीवित था, उसके ऊपर दया आई, अपने आश्रम में लाए। दया सतोगुण की वृत्ति है, ठीक, बहुत अच्छा है, लेकिन जब आसक्ति हो जाती है तो रजोगुण हो जाता है। वो हिरण के बच्चे में आसक्ति हो गई, रजोगुण में परिवर्तित हो गया, और हिरण का बच्चा से इतना आसक्ति हुई कि एक दिन नहीं आया तो उसको ढूंढने गए, नहीं मिला, गिर पड़े, प्राण निकल गया। अंत समय हिरण की यादगिरी दी तो जन्म हिरण का पाया। तो दूसरे जन्म में हिरण होने के बाद भी उनको की हुई भक्ति भूली नहीं। उस हिरण के शरीर में भी पुनः पुनः आश्रम में आके बैठे और अपने दिन व्यतीत करने लगे। और शरीर छूटने के बाद एक ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ तो उनका नाम फिर भरत ही पड़ा। लेकिन ये भरत अब संसार के किसी कार्य में अपने आप को लिप्त करना ही नहीं चाहते थे। तो वो जी कैसे रहे थे, जैसे जड़ हो, कोई लकड़ी हो, पत्थर का बना हुआ हो, किसी की सुनते नहीं, किसी को देखते नहीं, वो उस स्तर के ऊपर जी रहे थे। जो भगवद गीता में एक श्लोक है, आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, मैं तो ना आंख हूं ना कान हूं, चमड़ी को स्पर्श का पता लगता है, मैं तो चमड़ी भी नहीं हूं, ये भूख लगती है तो पेट में भोजन जाता है, मैं पेट भी नहीं हूं, स्पर्शन निस्नन गणन नस्नन इनवचन नंचन, ये जो श्लोक है पांचवें अध्याय का, वो सब कुछ करते हुए भी उससे अलग रह रहे थे जड़ भरत। तो ये महाराज जड़ भरत की महिमा का वर्णन है इस अध्याय में। किसी महात्मा का महानता का पता तब लगता है जब वो बहुत किसी रजोगुणी महान व्यक्ति को भक्त बना दे। श्री प्रभुपाद जी कहा करते थे, एक चंद्रमास करोड़ तारों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे एक बहुत बड़े व्यक्ति को भक्त बनाने से लाखों का उद्धार हो सकता है। एक राजा भक्त बन जाए तो पूरी प्रजा भक्त बन जाती। तो ये महाराज जड़ भरत का एक बहुत बड़े उस समय के राजा सिंध सोवेर के राजा, सिंध तो अभी भी इतिहास में हमारे पास बहुत बड़ा विराट सिंध का प्रांत था, असल में हिंद शब्द भी सिंध से निकला है, जब हिंदुस्तान शब्द ही नहीं था तब सिंध था। तो 5000 साल पहले तो सिंध का इतिहास आज भी मिलता है, वहां तो खंडरों के अंदर से मोहनजोदड़ो के अंदर पुराने प्राचीन हमारी मूर्तियां मिली हैं, और ये तो रहुगण का समय बहुत प्राचीन समय है। जयद्रथ सिंध के राजा थे महाभारत काल में, जो दुर्योधन की बहन के साथ शादी हुई थी, तो जयद्रथ भी सिंधु के राजा थे। तो सिंध बहुत प्राचीन इस धरती के ऊपर आर्यवृत का हिस्सा है, ये जहां आर्य रहते थे। तो वहां के राजा महाराज रहुगण, और सोवीर शब्द सौराष्ट्र, जो गुजरात भी उस समय में बहुत वो हिस्सा गुजरात का कच्छ के पास वाला, वो भी एक ही राजा के राज में हुआ करता था। तो ये राजा, अब राजा भी धर्मात्मा हुआ करते थे, कहां जा रहे थे, कपिल आश्रम गंगा सागर, हाँ बाकी तीर्थ बार बार, एक गंगा सागर एक बार, हाँ बाकी तीर्थ कितनी बार जाओ लेकिन गंगा सागर एक बार जाने से सब तीर्थ हो जाते हैं। तो जहां गंगा जी समुद्र में मिलती है वहां कपिल का आश्रम है। कपिल का आश्रम पहले था, गंगा सागर बाद में बना, इसलिए हमारी भागवत में गंगा सागर नहीं लिखा है, कपिल आश्रम लिखा है, क्योंकि कपिल मुनि की प्रेरणा से गंगा को भागीरथ धरती पे लाया। तो गंगा बाद में वहां आई है, कपिल आश्रम पहले से था। तो कपिल आश्रम जा रहे थे, इस गंगा सागर नहीं, कपिल आश्रम जा रहे थे। तो कपिल मुनि भगवान की विभूति है। कौन सा श्लोक है दसवें अध्याय में, सिद्धानाम कपिलो अस्मि, सिद्धों में मैं कपिल हूं। तो कपिल देव तो सांख्य दर्शन के हमारे देहूति के पुत्र, क्योंकि तीसरे स्कंद में आता है देहूति को शिक्षा देने के बाद कपिल देव कपिल आश्रम की तरफ चले। तो कपिल देव संभवतः उससे पहले भी गंगा आई हो, लेकिन वो आश्रम कपिल आश्रम, भागवत में कपिल आश्रम शब्द लिखा है। तो कपिल आश्रम जा रहे थे। तो उस समय जाने के लिए साधन क्या था, राजा को पालकी में उठा के जाया करते थे अगर राजा है तो, और राजा बंदी बन जाता था तो बैलगाड़ी में ले जाते थे। कि मैं पढ़ रहा था, आखिरी मुगलों का शहंशाह दिल्ली का बहादुर शाह जफर, जब अंग्रेजों ने उसको बंदी बनाया तो 15 व्यक्ति अपने रानी बच्चों के साथ बैलगाड़ियों में यहां से कलकत्ते ले गए, दिल्ली से कलकत्ते तक बैलगाड़ी में, बैलगाड़ियों में ले गए। तो उस वक्त में साधन यही था, तो राजा पालकी में जाता था जब राजा होता था, और बंदी बने तो फिर बैलगाड़ी। तो पालकी उठाने, तो अकेले राजा तो नहीं जाते होंगे, ये भी ध्यान रखना चाहिए। राजा जाएगा तो पीछे रानियां भी होंगी और मंत्रीगण भी होंगे, सैनिक भी होंगे, राजा तो अकेला नहीं जा सकता है वैसे। तो चार पालकी उठाने वाले जो कहार थे, वो एक नदी का नाम है इक्षुमती नदी, ऐसा कुछ नाम है, इक्षुमती नदी नाम है शायद, क्या? अब ये नदी कहाँ है इतिहास में, ज्योग्राफी इसकी देखनी चाहिए कि भूगोलक रूप से ये नदी कहाँ है। इक्षुमती पता लगना चाहिए, इस रास्ते में कहीं ना कहीं आती होगी, इसकी खोज करना थोड़ा भूगोल में। इक्षुमती नदी के तक आते आते एक कार बीमार हो गया, एक पालकी उठाने वाला बीमार हो गया। तो निश्चित रूप से यह ये नदी का किनारा है, वहीं कहीं जड़भर्त के पिताजी रहते थे। जड़भर्त का जन्म कहां हुआ था, ब्राह्मण कहां का था, किसी ने पढ़ा है? कन्या कुबज का तो नहीं था? नहीं, हाँ नाम लिखा है कि वहां ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, ये भी ढूंढ लेना चाहिए थोड़ा सा, ये भी खोज करनी अपने हिसाब से चाहिए। तो ये जड़भर्त मोटा तकड़ा देखने में था, और उसके लिए भागवत में शब्द क्या लिखे हैं कि उसके पांव ऐसे मोटे तकड़े थे जैसे, दो शब्द लिखे, गर गोखर समान। खर कहते हैं वो जो खच्चर मोटे मोटे गधे जिसके ऊपर सामान उठाते हैं, तो उसके अच्छे से भार उठाने जैसा था ऐसे लिखा है। तो उसको पकड़ के कहा कि आप पालकी उठा लो, तो उसको पालकी में उठाने में लगा दिया। अब राजा रघुगण पालकी में जा रहा है, और ये जड़भर्त तो मुक्त महात्मा है, प्रभुपाद जी लिखते हैं सत्य, ये वैष्णव है। तो वो नीचे 3 फुट अपने पांव के आगे देखता है, तो कोई चींटी तो नहीं है, कोई जीव जंतु तो नहीं है रास्ते में, ऐसे नहीं मेरे पांव से किसी जीव की हत्या हो जाए। अब देखते हुए अगर नीचे देखेगा तो पांव को रोकना पड़ेगा, तो 3 के पांव चल जाते, इसका पांव रुक जाता तो पालकी हिल जाती। आप में से कोई पालकी में चढ़ा है? हम पालकी में चढ़ के गए थे जमुनोत्री और केदारनाथ। पहले तो पालकी वाले हमको देख के बोला, एक पालकी हमारे पास बड़ी है, उसका पता करते हैं, ले आते हैं कहीं से। जब पालकी आई तो भी आनाकानी कर रहे थे, हमने बोला 8 हो जाओ, 4 नहीं भाई, जल्दी जल्दी कंधे बदल देना। तो उसने बोला हम 6 में काम चला लेंगे जमुनोत्री में, और 6 ले गए, मुझे लेके भी आ गए, और उसमें कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन वो चलते हैं जैसे घोड़े की 4 टांगे चलती है ना, तो उसके पांव एक दूसरे के साथ तालमेल में चलते हैं। जब केदारनाथ जा रहे थे तो वो बहुत लालची थे, बोला हम 4 ही उठा लेंगे, और ये 14 किलोमीटर से ज्यादा था, वो तो हर 1.5 किलोमीटर के बाद मेरे को कैब 100 रुपया दे, 4 पराठे खाएंगे। और सब पहुंच गए देर से, मुझे रात को पहुंचाया मरते मरते। वापस में आते आते उतरान थी ना, एक का पांव खिसका और मैं गया गंगा में। और वो नीचे, पालकी भी नीचे, पालकी का डंडा भी मुड़ गया, टूट गया लकड़ी का। तो हमको मालूम पड़ा कि पालकी वाले का एक का पांव टेढ़ा होता है ना, तो ऊपर वाले के प्राण निकलते। 4 पांव ऐसे चलते हैं बहुत तालमेल में, और फिर जमुना के गंगा के किनारे नीचे खाई में गंगा दिखती है। तो ये तो बहुत बड़ा मुश्किल काम है, असल में समझते हैं ऊपर से आसान बैठे, आसान नहीं, ऐसे मरे हुए की तरह ही जाना है। मरे हुए को 4 उठाते ऐसे ही उठाते हैं, तो जिंदे को पता लग जाता है, मरे को पता नहीं लगता है। वो मैंने आज एक बार एक समय देखा जमुनोत्री से मुझे वो लेके आ रहे थे तो ऊपर आदमी खड़े थे हमको देखा बोला ये इसको और उन बिचारों ने कहा पेट के कारण मैं देखा उसको मैं सच्ची समाचार सुना रहा हूं कि पालकी उठाने वाले बेचारे जो है ना वो मजबूरी है उनकी तो राजा के पाल इसको भी जबरदस्ती मजबूरी में पकड़ा था कोई इसका सहारा नहीं था पकड़ के बना तो पालकी उठा लो तो ये उठा रहा था अब पालकी हिल रही थी तो महाराज राहुगण कह रहा था क्यों ठीक नहीं चल रहे हो पालकी हिल रही है मुझे कष्ट हो रहा है। तो अब जो तीन है वो साथ बोल के कहने लगे हैं कि महाराज हमारी वजह से नहीं हिल रही है ये जो नया आया है ना इसको ठीक चलने नहीं आता। तो आज का श्लोक इस ये श्लोक ये है कि महाराज रहुगुण के क्रोध में डांटने के कारण तीन पुराने पालकी उठाने वाले अपने आप को राजा के भय से बचाने के लिए कह रहे थे कि ये चौथा जो अभी पकड़ा है ये ठीक नहीं चल रहा है इसको डांटिए महाराज हमको सजा मत दीजिए। तो आइए इस श्लोक को अब बस ऐसे शब्द को ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पढ़ने वाला श्लोक नहीं है। सांसर्ग को दोष एव न्यूनम एकस्यापि सर्वेषां सांसर्गिकानां भवितं अहरति इति निश्चित्या निश्मया किरपण वचो राजा रहुगण उपासीत वृद्धो अपि निसर्गेण बलात् कृत इषेद् उत्थित मन्यो अवेस्पृष्ट ब्रह्म तेजसम जातवेदसम इव राजा रजसावृत्त मतिर आह। तो इसमें जो पहला शब्द है सांसर्ग को दोष। अब सांसर्ग को मतलब सबका सांसर्ग शब्द का अर्थ होता है सामूहिक चारों को साथ चलना चाहिए ना तो सबका दोष लगेगा चारों का दोष है सांसर्ग को दोष तो सबका दोष एव न्यूनम ऐसा नहीं है सबका दोष नहीं है एकस्यापि एक ही जो इसमें है उसका है कि हम सबका नहीं है हम ठीक चल रहे हैं एकस्यापि सर्वेषां हम सब में बाकी सब ठीक है एक यही ही भविताम अहरति निश्चित निश्मय ये एक ही निश्चित रूप से हम सब में इस काम में जो सब लगे हुए संसर्गी का नाम भवितम अहरति इति निश्चय निश्मय निश्चय निश्मय जब तीनों ने कहा कि हम सब नहीं हम में से एक ही है ये ठीक नहीं चल रहा है जब ये राजा ने सुना निश्मय सुना निश्चित रूप से राजा ने जब ये सुना कि मेरे पुराने जो उठाने वाले हैं ये नहीं ये अकेला नया है यही मेरे पालकी के हिलने का कारण है तो उस वक्त ये जो कहे थे उनके लिए सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं ये तीन विचारे कैसे हैं जो अपना राजा को भय से बचने के लिए कह रहे कृपण वचो राजा रहुगण कृपण वचो यानी इनके वचन कैसे हैं बिचारे बहुत बड़े कृपण है किरपण वचों का श्रील प्रभुपाद जी ने अर्थ लिखा है, द वर्स ऑफ द पुअर सर्वेंट्स वर वेरी अफ्रेड ऑफ बींग पनिश्ड। गरीब सेवक जो राजा के दंड से भयभीत थे। वैसे किरपण और ब्राह्मण दो शब्द है। किरपण का मतलब होता है जो उधार नहीं हो बहुत, कुछ जिसके पास कुछ भी नहीं हो, तो ऐसे किरपण वचो है। इन विचारों के इसको कहा जाए कि दीन भाव से प्रार्थना की राज को, राजा को, महाराज हमारा कोई दोष नहीं है, ऐसे गिड़गिड़ाते हुए कहा। क्योंकि राजा के सामने तो कोई कोई तर्क वितर्क तो नहीं करना है, तो गिड़गिड़ाते हुए किरपण वच, बहुत आतुर भाव से, महाराज नहीं हमारा कोई दोष नहीं है, हमारे को क्षमा कर दीजिए, ये नया है इसका दोष है, किरपण वच हो। तो ऐसे वचन सुन के राजा रहुगण, अब एक शब्द बहुत अच्छा लिखा, उपासित वृद्ध। अब राजा रहुगण का ये गुण लिखा है, उपासित वृद्ध, ये रामचंद्र के गुणों में आता है रामायण में। वयो वृद्ध जो उम्र में बड़े हैं, ज्ञान वृद्ध जो ज्ञान में बड़े हैं, उपासित का मतलब उनके पास बैठने वाला। इसका इसका अर्थ ये है कि जिसके अच्छे मंत्रिमंडल में राजा, मतलब अच्छे महात्मा साधु बड़े समझदार लोग भी रहते थे, उनके बीच में बैठता था। ऐसा भाई कोई राजा अच्छे लोगों से, बड़े समझदार लोगों से जो बुद्धिमान है उनके पास बैठा था, मतलब उनको सुना था। ये अच्छे व्यक्ति की पहचान होती है, ये रामचंद्र के गुणों में है कि वयोवृद्ध जो उम्र में बड़े हैं, ज्ञानवृद्ध जो ज्ञान में बड़े हैं, उनका संग करके उनसे अनुभव से सीखते थे। तो ये राजा रहुगण जो है उसका ये गुण लिखा है कि उसके अच्छे संग का यहां वर्णन मिलता है कि अच्छे अच्छे ऋषियों का, पहले राजाओं के पास राजऋषि हुआ करते थे, राजऋषि नहीं, राजाओं के पास ब्राह्मण मंडली हुआ करती थी जो उनका मार्गदर्शन करती थी, को ब्राह्मणिकल काउंसिल जैसे कहते हैं। जैसे हर राजा को अपना गुरु होता है, तो राजगुरु जिसको कहते हैं, और भी बहुत से ब्राह्मण राजा के मार्गदर्शन के लिए होते थे धर्म के। तो ये राजा ऐसे बड़े बुद्धिमान व्यक्तियों के संग में रह के समझदार लोगों की शिक्षा में रहा था, उनके संग में रहा था, फिर भी अपी, तो ऐसे उपासित वृद्ध, वृद्ध का मतलब बड़ी उम्र के तजर्बेकार, जिसको अनुभवी लोगों के, समझदार लोगों के साथ रहा था, अपी उसके उसके बाद भी निसर्गेण। वैसे सर्गेण का मतलब होता है, जैसे जीवन में सर्ग होता है, उत्पत्ति है, तो कोई चीजें हमारे साथ, हमारा स्वभाव हमारे जन्म से होता है। भगवद गीता में जब पढ़ते हैं तो लिखा है कि कोई देव देवताओं के गुणों से संपन्न पैदा होता है, कोई असुरी गुणों से संपन्न पैदा होता है, जात होता है जन्म से। तो जन्म से निसर्गीय गण का मतलब है, जन्म से महाराज क्षत्रिय थे, तो क्षत्रिय का जो गुण उसके अंदर था, और क्षत्रिय का गुण क्या होता है, ईश्वर भावस्य। तो दूसरे के ऊपर शासन करना है या लड़ाई करनी है, युद्ध करना है, तो उसको रजुगुण से होगा, और रजुगुण के बगैर ये नहीं हो सकता। वैसे भगवान जब मिट्टी खा रहे थे ना कृष्ण यहां वृंदावन में, तो हरीश्वरी जी टीकाकार लिखते हैं कि भगवान ने कहा, देखो ये दांत तो मेरे है, ये द्वेज है, मैंने ब्राह्मण है, दांत कहते हैं द्वेज को, दो बार जन्म होता है ना, तो द्वेज कहते हैं ब्राह्मण को। अब मेरे को बहुत सारे असुर मारने हैं, या उसको मारने के लिए अगर रजोगुण नहीं आएगा तो मारूंगा कैसे, इसलिए रज को खाने लगे, तो रज खाने से रजोगुण हो जाएगा। वहां ये टीका उधर ऐसे लिखी है कि भगवान ने मिट्टी क्यों खाई थी, इसके बहुत से कारणों में एक कारण ये है कि अभी ये दांत जो है ये तो सतोगुणी है, ये द्वेज है, ब्राह्मण है, और मुझे यहां असुर संहार करना है, तो रज को लगाऊं, थोड़ा रजोगुण आ जाएगा तो ये असुरों का संहार हो जाएगा। तो राजा को, जैसे युद्ध करने के लिए रजोगुण की वृत्ति चाहिए। तो निसर्गेण का मतलब स्वभाव से महाराज रहुगण का जो राजा के रजोगुण का भाव था वो उदित हो गया। उदित हो गया ऐसे क्यों लिखा है? बोला जा रहे थे तीर्थ करने के लिए तो राजपाट के भाव को छोड़ के साधु भाव से जा रहे थे। भाई तीर्थ जब जाना है तो आदमी राजा बन के नहीं जा रहा था, तीर्थ में जाने के सामान्य। लेकिन जब उन्होंने कहा ये गलती कर रहा है तो राजा का जो शासन का भाव था वो रजोगुण का उसमें उदित हो गया। अच्छे लोगों के संग के बाद भी भाई जैसे इसमें वयवृद्ध लिखने का मतलब क्या है? वयवृद्ध लिखने का मतलब ये है कि वयवृद्ध कहते हैं जब तीर्थ जाना चाहिए तो सात्विक भाव से जाना चाहिए। भाई तीर्थ जाना चाहिए रास्ते में तपस्या पूर्वक जाना चाहिए, उसके अंदर कम से कम दो गुण तमो और रजोगुण का भाव नहीं होना चाहिए। ये तीर्थ यात्रा जाने की महिमा है। तीर्थ जाते थे तो रात को लोग रास्ते में पानी नहीं पीते थे, जब तक जा रहे हैं हरिद्वार तो गंगा में जाके ही पानी पिएंगे। लोगों का पहले नेम हुआ करता था कि भाई, और वहां जाके उपवास। रामचंद्र जी गंगा किनार के आए जब वनवास जाते हुए तो गुहेराज ने बहुत फल फूल लाके दिया तो रामचंद्र ने कहा कि नहीं, हम गंगा के किनारे आज उपवास करेंगे, केवल गंगा जल पिएंगे और कुछ पाएंगे नहीं। तो तीर्थ के कुछ मर्यादाएं होती हैं, जो समझदार है अभी तो तीर्थ जाते हैं, क्या बीच में 10 जगह रुकते चाय पी के जाते हैं, कौन सा तीर्थ में लाभ होगा? हाँ भाई, तीर्थ के लिए निकलते हरिद्वार से वृंदावन आते 3 जगह वो हल्दीराम के मिठाई खा के, फिर सब्जी के वो वहां से कचौरी खा के, फिर पकौड़ा खा के, तो यहाँ आके कचरा ही करते हैं, कुछ लाभ नहीं होता है। अरे भाई इतना 2-3 घंटे भी कुछ खाने पीने के बगैर नहीं आ सकते क्या? भाई तीर्थ के लिए निकले तो उसके लिए कुछ नियम बनाए, घर से निकले संकल्प करे कि अब जाके वृंदावन में जमुना जी को प्रणाम करके ब्रज की रज को माथे पे लगा के फिर चरणामृत से व्रत खोलूंगा। ऐसे कुछ तो जीवन में व्रत करके आना चाहिए, तीर्थ में आना है। वहां से निकलते ही 6 जगह पे रुकते रुकते घूम फिर के, ये तो फिर पर्यटन हो गया, ये तीर्थ नहीं हुआ, यात्रा नहीं हुई। इसका मतलब है कि तीर्थ यात्रा जाने वाले पहले बड़े सावधान होके जाते थे, पैदल जाना होता था फिर भी कुछ नियम पालन करते थे तीर्थ के। तो इसका मतलब ये राजा को अच्छी तरह से बड़े आदमियों ने समझाया था, ऋषियों ने, कि महाराज आप तीर्थ जा रहे हो आप रजोगुण को छोड़ के जाना। इसका मतलब ये है, क्योंकि वयवृद्ध नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं, कि ऐसी उनको शिक्षा थी कि अब इस वक्त जाते हुए दान पुण्य करते हुए जाओ, उदारता से जाओ। तीर्थ में जाना चाहिए तो सबसे लिए पवित्र होने के लिए जाना चाहिए, तो उदारता से तीर्थों में दान भी करना चाहिए। अगर राजा महाराजा दान ही करते थे, दान क्या करते थे? ये सारे घाट राजाओं के बने हुए, एक एक घाट जमुना के किनारे देखो राजा महाराजाओं ने बनाए, और बड़े बड़े राजाओं के अभी महल बने हुए हैं जहां आके रहते थे महीनों महीनों। तो ये पहले राजा धर्मात्मा थे, तो राजाओं को ये शिक्षा थी कि ऐसे रहना चाहिए, उदारता से दान करना चाहिए। यहां तो गाड़ी का किराया तो यहां तक आने का 10,000 रुपये देंगे, भाई 5,000-7,000 रुपये गाड़ी का किराया दे देंगे आने जाने का, रात रहने का, 2 दिन रहने का। लेकिन मंदिर की पेटी में 10 रुपया डालने से पहले ऐसे 2-3 बार दिल को ऐसे थाम थाम के फिर निकालेंगे। ये भाई बेकार का खर्चा कितना करते हैं उसका कोई विचार नहीं है, लेकिन जहां करना चाहिए वहां उनको बुखार आ जाता, क्योंकि कभी सीखा नहीं है बड़े आदमी से क्या करना चाहिए तीर्थ में। तीर्थ में जाके उदारता होनी चाहिए, सत्वगुण की वृत्ति होनी चाहिए और दीन भाव होना चाहिए। तीर्थ भगवान के, भगवान के, जैसे ये वृंदावन है भगवान का घर है, तो यहां रहने के लिए कुछ मर्यादाएं होनी चाहिए। बहुत निम्र भाव से 6-6 गोस्वामी कैसे रहे थे, प्रभुपाद जी ने हमारे को तो लिखा है मतलब भक्तों को कि गोस्वामी के भाव से रहने वाला ही वृंदावन में रह के वृंदावन का लाभ ले सकता है। गोस्वामी के भाव से रहने का मतलब कितने निम्र भाव से रहते थे, पेड़ के नीचे रहना है कि पेड़ आसक्ति न हो जाए, 3 दिन 1 पेड़ के नीचे भी नहीं रहते थे, एक जगह से भोजन भी नहीं लेते थे, कहीं से कभी मधुकरी लिया, कभी कहीं से मधुकरी लिया। तो ये एक तीर्थ का भाव होता है, वो अगर नहीं है, तीर्थ जाते हुए तीर्थ में रहते हुए भी कुछ नियम है, ये नियम शास्त्रों से मिलते हैं, तो राजा के अंदर निस्सर्गेण वो क्षत्रिय का भाव जागृत हो गया। क्योंकि अरे दंड, कोई मेरा सेवक गलती कर रहा है तो इसको सुधारना चाहिए, खराब नहीं है, ये राजा का धर्म है। इसलिए निसर्गेण, निसर्गेण का प्रभुपाद ने अर्थ लिखा है, निसर्गेण उसका जो स्वभाव था, जो एक क्षत्रिय का होना चाहिए, वो एकदम अपने आप जाग गया। यहां बलात् लिखा है, बलात्कृत ईषित उथित, ईषित बलाद कृत ईषित, अपने आप उथित ऐसे जागृत हो गया अचानक थोड़ी देर के लिए। और तो उस क्षत्रिय सुबह में हूं क्या चीज देखी, तब कहते हैं मन्यो हो, मन्यो कहते हैं क्रोध को, क्रोध को मन्यो कहते हैं। तो उसमें क्रोध का भाव जागृत हो गया, अचानक उनको क्रोध आ गया। तो महाराज रघुगुण को तीन पुराने कहारों के दीन प्रार्थना से कि हम दोषी नहीं है, ये नया दोषी है, तो राजा का रजोगुण जाग गया। जबकि उन्होंने बहुत बड़े महात्माओं का संग भी किया था और तीर्थ की जाने की मर्यादाओं को भी जानते थे, फिर भी उनके स्वभाव के कारण उनको क्रोध आ गया। अब जब उनको क्रोध आया तो उन्होंने क्या किया, किसके ऊपर क्रोध आया, तो क्रोध किसके ऊपर आया, नए के ऊपर। अब नए का गुण लिख रहे हैं, राजा के लिए गुण क्या लिख दिया, वयोवृद्ध, और फिर उसके बाद भी निसर्गेण, कि बड़े अच्छे संतों के संग के बाद भी उसके अंदर क्रोध का भाव जागृत हो गया। और फिर अब किसके ऊपर क्रोध आया, उसके लिए लिख दे, अविस्पृष्ट ब्रह्म तेजसम, ये जो जड़ भरत है इसका अंदर ब्रह्म तेज था, लेकिन वो साफ दिखाई नहीं दे रहा था, ढका हुआ था। अब स्पृष्ट, स्पष्ट नहीं था, साफ दिखाई नहीं दे रहा था। असल में बात क्या है कि एक क्षत्रिय तेज है, एक ब्रह्म तेज है, शासन सुचारू तब चलता है कहीं का जब ब्रह्म तेज मार्गदर्शन करने वाला हो और क्षत्रिय तेज शासन करने वाला हो। और उल्टा कब होता है, जब क्षत्रिय तेज शासन करे ब्रह्म तेज के ऊपर, तो उल्टा काम हो जाता है। ये यहां उल्टा काम क्या हो गया कि जिसको डांटने जा रहे हैं वो ब्रह्म तेज संपन्न है, वो जड़ भरत महात्मा मुक्त महात्मा है। भागवत में ऐसे दो तीन हैं जो सब कुछ जानने के बाद भी जड़ जैसे रहे, उनमें एक जड़ भरत है और एक कौन, अवंती ब्राह्मण भी ऐसे रह रहा था, एक है महाराज सगर का बेटा अंजस्मस, वो बिल्कुल ऐसे रहते थे, राजा राज करना ही नहीं था तो उल्टे सीधे काम करते थे। ऐसे तीन चार का नाम है जिन्होंने बिल्कुल ऐसा जीवन जिया है जिसको कहते हैं मुक्त, संसार से कुछ लेना ही नहीं है, जड़वत जैसे अवधूत जैसे रहते थे। तो इसका तेज छुपा हुआ था, अब अस्पृष्ट स्पष्ट नहीं था क्या ब्रह्म तेज, कैसे ढका हुआ था, तो उदाहरण देते हैं कैसे ढका हुआ था, जड़ स्पिरिचुअल इफल्जेंस, जात वेद सम, ये तो वेद का शब्द है, जात वेद सम, अग्नि जो जलाते हैं वो प्रकट नहीं है, जिसका अभी ज्वाला ढकी हुई है, जैसे अग्नि ढकी हुई हो जिसका तेज दिख नहीं रहा हो, ऐसे जड़ भरत का ब्रह्म तेज दिख नहीं रहा था। ऐसा एक उदाहरण और कहां है, भगवान श्री कृष्ण के प्रकट्य से पहले वसुदेव के हृदय में भगवान प्रवेश हुए और वसुदेव के हृदय में तो वसुदेव चमकने लगा, लेकिन जब वो भगवान का तेज देवकी के हृदय में स्थानांतर हुआ तो देवकी कंस के भय से उसका तेज दिखाई नहीं दे रहा था। तो वहां लिखा है जैसे अग्नि राख से ढकी हुई हो, उसके अंदर भगवत भगवान तो आ ही गए थे लेकिन देवकी में से वो तेज दिख नहीं रहा था। वहां दूसरा कौन सा उदाहरण दिया है, ज्ञान खल। जब कोई ब्रह्मचारी है उसके पास ज्ञान है लेकिन वो प्रकट नहीं हो रहा है, ज्ञान है वो प्रकट नहीं हो रहा है। ऐसे और भी कई महात्मा है चुपचाप ऐसे रोड पे पड़े होते हैं, कोई रोटी देता है तो खाते हैं, हम पहचानते नहीं है, लेकिन कभी कभी किसी के से अच्छी बात कोई गलती करता है देखते हैं धर्म के काम में तो फिर अचानक बोल पड़ते हैं। और अभी ये ऐसा लिखने की क्या जरूरत है कि उसका तेज छुपा हुआ था, क्योंकि अब जब पहली बार जड़ भरत बोलेगा तो महाराज रघुगुण पालकी से नीचे कूद के उनके चरणों में पड़ जाएंगे, उनके बोलते ही उनके ब्रह्म तेज का प्रकाश ऐसे अपने आप में सूर्य के समान स्पष्ट हो जाएगा कि राजा होते हुए भी अपने उन नौकरों के सामने अपने सारे सेवकों के सामने जड़ भरत के चरणों में गिरेंगे। तो ब्रह्म तेज यहां इसलिए बता रहे हैं कि अब दिख नहीं रहा है, जैसे दिखेगा तो महाराज रघुगण क्योंकि समझदारों के संग में रहा है तो वो तत्काल ही इसको पहचान जाएंगे। ये शब्द जो लिखे हैं इसके अंदर ये सब भाव अपने आप में है कि ऐसे होने वाला है इसके बाद। तो अब जात वेद सम, जैसे राख से अग्नि ढकी हुई हो, ये उदाहरण दिया है। रजसा आवृत, ऐसे ही महाराज जो बहुत अच्छे भाव से जा रहे थे तीर्थ यात्रा में, उनके अंदर भी रजोगुण ढका हुआ था जो अब प्रकट हो गया। महाराज का रजोगुण पहले प्रकट हो गया और जड़ भरत का ब्रह्म तेज बाद में प्रकट होगा। तो इसको प्रभुपाद ने, इसने तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने लिखा है कि यहां सतोगुणी और रजोगुणी व्यक्ति का बहुत अच्छा उल्लेख हुआ है कि वो ढका हुआ होता है, जैसे खोलते हैं वैसे पता लग जाता है। एक ये उदाहरण पहले कोई महाराज दिया करते थे कि हम क्या हैं हमको पता नहीं है, वो उदाहरण दिया कि भाई आपके हाथ में एक मौसमी दी जाए, उसको दबाएंगे तो क्या निकलेगा, किसका, आम का नहीं निकलेगा, क्यों, उसमें है ही मौसमी का, आम का है ही नहीं तो कहां से निकलेगा। ऐसे जब हमारे को भी संसार में कोई दबाता है, कोई क्रोधित करता है, कोई चिढ़ाता है, कोई दुख देता है, तो हमारे अंदर से भी वही निकलता है जो अंदर होता है। उसने कुछ नहीं किया, अगर किसी ने आपको बुरा भला कहा और आपने क्रोध किया तो उसका दोष नहीं है, ये आपके अंदर था, उसने दबाया और ये आपकी जूस निकली। ये बात समझ में आ रही है। तो यहां महाराज का जूस क्या निकला, उसमें था ही रजोगुण, वो निकल के आया। और जड़ भरत को महाराज डांटेंगे फिर भी अंदर से क्या निकलेगा, जो उसके अंदर सतोगुण भरा हुआ है वो निकलेगा। तो असल में हमारे अंदर क्या भरा हुआ है तब पता लगता है जब कोई परिस्थिति ऐसी प्रतिकूल आती है, तब हमारे अंदर जो है वो निकल के आता है, वैसे नहीं दिखता है, बाहर से बड़ा अच्छा दिख रहा है लेकिन दबाने के बाद जो निकलता है तब पता लगता है कि इसमें रस क्या है। तो इसलिए संसार में भगवान ने सबके लिए ऐसे दुखदायक मौके बनाए हैं ताकि उनके अंदर का जो जूस से निकले उसको पता लगे, कहीं वो गलत फहमी में रह ना जाए। थोड़ी देर के लिए राजा के अंदर रजोगुण आया लेकिन ब्राह्मण को देख के फिर उनके सात्विक भाव आ जाएंगे। ऐसे एक बार आपको हमने बताया था, एक सन्यासी हमारे प्रभुपाद जी के शिष्य प्रचार के लिए कहीं गए सन्यास के वेश में, तो सामने वाला जो था उसने उनके साथ थोड़ा सा वाद विवाद कर लिया कि भाई आप कृष्ण को कोई भगवान मानते हैं, हम तो सब देवी देवताओं को मानते हैं, ऐसे बहुत लोग कहते हैं भारत में, ये सामान्य है। तो उसको क्रोध आ गया, बात करते करते ऐसे जोर से मुक्का मारा और वो सेठ जी का जो शीशे का टेबल था वो टूट गया, तो शीशा था टेबल, मुक्का मारा शीशा ही टूट गया। अब सेठ जी कहते स्वामी जी आप सन्यासी हैं, आपको इतना क्रोध? तब तक उसको याद आया मैं सन्यासी हूं। उसने बोला सेठ जी जो मैं असली था ना, जैसा मैं असली था प्रभुपाद को मिलने से पहले, अगर वो मैं होता ना तो ये मेरा मुक्का शीशे पे नहीं आपके सर के ऊपर जाता और खोपड़ी फूट जाती। बस इतना हुआ है सन्यासी के बाद खोपड़ी के बजाय शीशा टूटा है। मतलब अभी अंदर पड़ा है लेकिन थोड़ा हल्का हुआ है। तो असल में ऐसा है कि हम भक्त बन जाते हैं तो वो चीजें अंदर से थोड़ी छुपी छुपी रहती हैं, जैसे अग्नि ढकी हुई है, और जैसे ऐसी परिस्थिति आती है तो एकदम वो बाहर निकल आता है। अच्छे भलों को देखा है, बहुत समझदारों को देखा है कि जब ऐसी परिस्थिति आती है ना, जो अंदर होता है वो निकल ही आता है। तो ये निकलने के लिए हमें पता भी लग जाता है कि हमारे अंदर क्या पड़ा है। तो महाराज के अंदर छुपा हुआ जो रजोगुण था वो प्रकट हो गया। मति ही, अब महाराज की मति रजोगुण की हो गई। मति के लिए हमने एक बार आपको बताया था, क्या बताया था याद है? मत बनाना। कोई अगर कोई किसी को पुराने जमाने की सब बातें याद हैं तो कहते हैं इसकी स्मृति अच्छी है। अंग्रेजी में एक ही शब्द है इंटेलिजेंस, लेकिन संस्कृत में जिसकी बुद्धि बहुत भूतकाल की बातों को याद रखता है उसको कहते हैं स्मृति अच्छी है, इसकी याददाश्त अच्छी है, राइट? कोई तत्काल अच्छा उत्तर दे तो कहते बड़ा बुद्धिमान है। यह हुआ वर्तमान की बुद्धि। भविष्य में कोई कहे कि मैं कृष्ण भक्त बनूंगा तो कहेंगे ये बड़ा, इसकी मति बहुत अच्छी है। मति मतलब फ्यूचर की बुद्धि, कि भविष्य में किस चीज को चुना है इसने। मति कहके जैसे मतदान कहते हैं, मन किसी को चुनना। तो भीष्म पिता कहते हैं इति मति उपकल्पिता वितृष्णा, मेरी मति अब कृष्ण आपको स्वीकार करती है। तो भविष्य में जीवन में जो अपने लक्ष्य को चुनता है उसको मति कहते हैं। मेरा राय भविष्य में ऐसे होगा, ये मेरी मति, ये मेरा मत है। तो यहां राजा की मति मतलब बुद्धि, असल मति का मतलब है बुद्धि, ये बुद्धि का स्तर है। एक इंटेलिजेंस शब्द है अंग्रेजी में, और नहीं तो संस्कृत में 10-12 शब्द हैं बुद्धि के लिए। वो कौन सा भगवत गीता के दूसरे अध्याय में बुद्धि को प्रज्ञा कहा है, स्थित प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञा बुद्धि है। ऋतंबरा बुद्धि का नाम है। तो बुद्धि के बहुत के स्तर, जैसे प्रेम शब्द सिर्फ अंग्रेजी में एक ही शब्द है लव, प्रेम, लेकिन प्रेम के बाद भक्ति रसामृत सिंधु में क्या है, प्रेम स्नेह मान प्रणय भाव महाभाव मदक मदन माख्यान भाव, ये तो इसके ऊपर के स्टेजेस हैं। प्रेम के बाद के ऊपर के स्तर है, और सबसे ऊपर राधा रानी का स्तर है महाभाव स्वरूप राधिका, वो महाभाव स्वरूप नहीं है। तो प्रेम से इतना सारा ऊपर का और भी स्टेजेस हैं। तो ये महाराज का मत रजोगुणी हो गया। अब श्री प्रभुपाद जी के इस श्लोक के तात्पर्य को पढ़ते हैं। 5 अनुवाद को सुन लीजिए। राजा रहुगण दंड से भयभीत कहारों के वचनों का अभी प्रयास समझ रहा था। ये जो कृपण वच दंड से भयभीत जो वचन कहते उसको समझ रहे थे। उसकी समझ में यह भी आ गया था, आ गया कि मात्र एक व्यक्ति के दोष के कारण पालकी ठीक से नहीं चल रही। ये सब अच्छी प्रकार जानते हुए तथा उनकी विनती सुनकर वो कुछ कुछ क्रोध हुआ। यद्यपि वो राजनीति में निपुण एवं अत्यंत अनुभवी थे, नहीं आना चाहिए क्रोध लेकिन आया। एक घर में नौकर था, वो बेचारा बुद्धिमान कम था, काम एक कहो करता उल्टा था। तो घर की मालकिन ने सेठ को कहा, ये बिल्कुल मूर्ख है, एक काम कहो दूसरा का। सेठ हंस के कहने लगा, देवी मूर्ख नहीं होता तो नौकर थोड़ी होता, सेठ होता ना, मूर्ख है तभी तो नौकरी कर रहा है। तो राजा को यह मालूम है कि पालकी उठाने वाले तो बेचारे तो शूदर होते हैं, इनको बुद्धि थोड़ी है, ये जानते ही हैं कि तभी तो पालकी उठा रहे, तो राजा नहीं हो जाते। तो इतना भी पता था कि इनकी भी बुद्धि इतनी ही होती, तो ये भी जानते थे। पर ऐसे लोगों से बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए ये भी जानते थे, क्यों ऐसे नहीं सामान्य लोगों के साथ बीच में बात भी नहीं करनी चाहिए, इसमें मतलब सब मर्यादाएं जानते थे राजनीति की। उसका ये क्रोध राजा के जन्मजात स्वभाव से उत्पन्न हुआ था, जन्मजात स्वभाव क्षत्रिय के कारण क्रोध उत्पन्न हुआ था। इसका मतलब ऐसे नहीं है कि कोई उसके ऊपर कर रहे थे, उसका जन्मजात क्रोध था। आपको बताया था ना, स्वभाव किसी का होगा वो जाता नहीं है। एक उदाहरण आपको याद है, कभी दिया था, वो एक सोनार था, भक्त हो गया, काम सोनार का करता था, भक्त बन गया। घूमते हुए मधुकरी करने गया, किसी की रोटी मांगी, तो जब उसने रोटी दी तो ऐसे कर रहा है, 10-12 ग्राम से ज्यादा तो नहीं होगी। अब उनका सोनार का जो दिमाग था वो आया, फिर ऐसे देखता है 24 क्रेट तो पूरी नहीं, इसमें मिक्स है, आटे में मिक्स है। तो उसका दिमाग जो था वो उसके ऊपर भी चल रहा, तो कुछ भी उसका स्वभाव है, कहीं जाएगा नहीं, अंदर से निकल ही आएगा। उसका स्वभाव ही ये था, सारी उम्र ऐसे ही किया, तो रोटी को भी ऐसे करता था, माला भी ये तो इतने ग्रेट की है। तो स्वभाव उसका बाहर निकल आया। वस्तुतः राजा रहुगण का मन रजोगुण से आवृत था, रजोगुण तो अंदर ही था, कहां था, मन में था, मन रजोगुण से आवृत था। अत वो जड़ भरत से जिनका ब्रह्म तेज राख से ढकी अग्नि के समान सुषुप्त नहीं था, सुस्पष्ट नहीं था, इस प्रकार बोले। तो उनका तो रजोगुण प्रकट हो गया, उनका प्रकट नहीं था, उनको ऐसे बोले। क्या बोले वो अगले श्लोक में बोलेंगे, कल सुनेंगे, लंबा सा श्लोक है। अब श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य, इस श्लोक में रजोगुण तथा सतोगुण का अंतर बताया गया है। यद्यपि राजा राजनीति और राज्य संचालन में निपुण था, तो भी रजोगुणी होने के कारण थोड़ी विचलित होने पर क्रोध हो गए। अपने गूंगे तथा बहरे बनावे के कारण हो रहा अन्याय जड़ भरत को सहना पड़ा था, तो भी वे अपने आत्मज्ञान के कारण शांत बने रहे। इसका मतलब ये है कि जब तीन कहारों ने कहा हम नहीं, महाराज ये कर रहा है, तो इसको भी तो क्रोध आना चाहिए ना, कि मैं नहीं कर रहा हूं, चिल्लाना चाहिए ना, भाई राजा है ऊपर दंड देगा, इनको भी तो भय होना चाहिए ना। लेकिन इसको तो कुछ उनकी परवाह ही नहीं थी, ये तो अपनी मौज मस्ती में था। लेकिन राजा को क्रोध आ गया, उसका रजोगुण जाग गया, लेकिन ये अपने सतोगुण में स्थित रहे, ये विचलित नहीं हुए। तो दोनों के स्वभाव का पता लगा, उनके अंदर था ही नहीं तो निकलेगा कहां से, उसके अंदर वो चीज थी ही नहीं, तीन जन्मों से उन्होंने उस चीज को अच्छी तरह से बाहर निकाल दिया था। इससे एक पता लगता है इस प्रसंग को देख के, कि ये बुरी चीजें निकलने में अच्छी साधना के बाद भी इसको दो जन्म लगे। इसका मतलब ये इतना कोई आसान काम नहीं है कि ये सब चीजें अंदर से जल्दी निकल जाएं। राजा के ये भरत भी तो राजा था ना, तो रजोगुण को निकालने के लिए इसे तीसरा जन्म लगाए, तब जाके जड़ भरत में से ये रजोगुण का जो स्वभाव है वो निकला है, तीसरे जन्म में जाके इससे मुक्त हुए हैं। और जब ये बोलेंगे ना तो महाराज कहना आप तो बहुत बड़े विद्वान बोल रहे हैं, कौन है, कुमार है या कोई बहुत बड़ा विद्वान है, जति सती कौन है? तब वो पूछेंगे कि आप कहां के राजा हैं। बोला मैं सिंध सोवेर का। बोला ये सिंध सोवेर कौन से वर्ष में आता है? कहेंगे भारत वर्ष में। तो बोले भारत वर्ष का नाम कैसे पड़ा? बोला महाराज भरत से। बोला वो मैं हूं। अब तो राजा रघुगुण तो बिल्कुल ऐसे के भाई वो तो उसके सामने तो छोटे राजा हुए ना, वो तो महाराजा थे। तब वो हाथ जोड़ के सूर कहेंगे अरे क्या मैं गलती कर दी। तब उनको पता लगेगा ये स्वभाव निकलने में इतने बड़े राजा ने इस स्वभाव को कैसे बदला है। असल में स्वभाव बदलने का ये बहुत बड़ा ये प्रसंग है, स्वभाव कैसे बदला जाता है। राजा रजोगुणी है भरत, लेकिन आज स्वभाव बदला है तो महात्मा हो गए। तो स्वभाव बदलने में बहुत समय लगता है और उसके लिए कुछ कष्ट आना ही चाहिए, नहीं तो स्वभाव बदलेगा नहीं। अवंतिका के ब्राह्मण में आंखों से देखा कि सब बुरा कह रहे थे फिर भी शांत रहा, ये तो अभ्यास कर रहा था वो ब्राह्मण। वो असल में सन्यासियों को पूरा गीत देते हैं गाने के लिए, ये सन्यासियों के मंत्र में आता है ये अवधूत ब्राह्मण वाला। तो ये फिर भी वो विचलित नहीं हुए, इतने पर भी उनका ब्रह्म तेज उनके शरीर से स्पष्ट रूप से झलक रहा था। उनका ब्रह्म तेज उनमें था लेकिन महाराज के रजोगुण के कारण वो उनको देख नहीं पाया। अब वो स्पष्ट हो जाएगा, यहां तात्पर्य पूरा होता है श्रील प्रभुपाद जी का। तो असल में यहां तीन गुण एक जगह आपको दिख रहे हैं, तीन कहार तमोगुणी है, वो शूद्र है लिखा है, महाराज रजोगुणी है और जड़ भरत सतोगुण से भी ऊपर है, सतोगुणी कम से कम है। अब तीन गुण कैसे तमोगुण वाला दोष दूसरे के ऊपर देगा, ये दिखाई दिया। रजोगुण वाला क्रोध में एकदम आ जाएगा लेकिन सतोगुण वाला सब परिस्थिति में शांत रहेगा। तीन गुण एक समय काम करते हुए दिख रहे हैं, तो तीन गुण एक ही समय कैसे काम करते हैं उसका ये दर्शन है। और जिसके अंदर जो स्वभाव है वो प्रकट हो जाता है, तो अपने स्वभाव को बदलने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न जिज्ञासा? हाँ नहीं, अगर पी जाते हैं तो फिर वापस कहीं ना कहीं तो निकलेगा वो बाहर, कोई से पूछते किसी से हम पहुंचते नहीं थे, क्रोध आता है तो वहां निकलता नहीं है, घर में आके घर वालों के ऊपर निकालते। असल में ये अभी स्तर हमारा शारीरिक स्तर का है, जिस दिन कोई बोलेगा तो हम कहेंगे शरीर को बोल रहा है, मैं शरीर थोड़ी हूं, बोलने दीजिए क्या फर्क पड़ता है। ये इस तरह आना चाहिए कि ये किसको बोल रहा है, शरीर को बोल रहा है ना, मैं तो ये शरीर हूं नहीं तो मैं काहे के लिए दुखी हो जाऊं। एक महात्मा को किसी ने कहा कि महाराज वो जो सामने रहता है ना आपको गाली देता है। महाराज ने हंसने लगे, बोला मेरे को जानता नहीं है गाली कैसे देगा। बोला महाराज आपके आश्रम का नाम लेता है, आपका नाम लेता है, गाली देता है। बोला बेटा वो मेरे को आत्मा हूं मैं जानता है क्या, वो शरीर को गाली दे रहा है ना, शरीर को खराब कह रहा है ना, वो तो मैं भी कहता हूं दुखदाई ये खराब है, इसमें कौन सी खराब बात कह रहा है, वो सच कह रहा है, वो मेरे को आत्मा तो नहीं मानता है ना। और फिर महाराज ने कहा उसको सुख खुश होता है आपको कुछ बुरा कहता है तो? महाराज पूछा महाराज वो जब आपको गाली देता है, महाराज ने पूछा कि वो जब मेरे को गाली देता है खुश होता है? बोला महाराज बहुत खुश होता है। बोला देखो किसी एक को खुश होने के कारण तो हम जीवन में बन गए, हमारा तो कुछ है नहीं, वो हमको आत्मा थोड़ी मानता है, वो हमको शरीर मान के गाली दे रहा है, हम भी कहते हैं शरीर खराब ही है, कौन सा अच्छा है। तो ये स्तर आए कि ये जो कह रहे हैं ये तो शरीर को कह रहे हैं, मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं आत्मा हूं, तो मैं काहे के लिए झगड़ा करूं। ये स्तर आना है, ये स्तर ऊपर का है। हम अभी तक शरीर के स्तर के ऊपर इसको कहते हैं कि रोकने का प्रयास कर रहे हैं, यानी जबरदस्ती। वो तो ठीक है, इसको कहते हैं कोई बुरा कहे तो उसको सह जाना चाहिए। ये हुआ तृणादपि सुनिश्चेन, फिर उसको भूल जाना चाहिए, ये और दूसरा स्तर है। सहना, फॉरगिव कर दिया, माफ कर दिया, उसके बाद फॉरगेट करना, भूल जाना चाहिए, ये दूसरा स्तर है। तीसरा स्तर है उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि ये बेचारा जानता नहीं है क्या कर रहा है, भगवान इसको बुद्धि दो कि ये पाप कर्म से बच जाए। जैसे हरिदास ठाकुर कह रहे हैं, अरे ये मुझे मार रहे हैं, ये जानते नहीं है, अरे भगवान इनको क्षमा कर देना। तो ये जो तीसरा स्तर है ये है वैष्णव का स्तर। वैष्णव का स्तर ये तीसरा है, दुख देने वाले के लिए प्रार्थना करते हैं कि ये बेचारा जानता नहीं है ऐसे क्यों कर रहा है, भगवान इसको सदमति देना। ये वैष्णव का स्तर है। भूल सहन जाना, बहुत से लोग, अभी कोई ताकत वाला है तो आपके हर एक को सहना पड़ता है, सामने वाला बलवान है तो आप क्या करोगे, सहना ही पड़ेगा, ये तो मजबूरी है। लेकिन भूल जाना ये बुद्धिमान व्यक्ति का काम है। काहे के लिए, मैं अपनी दिल में जहां भगवान को रखना है, वहां जिसको मैं देखना नहीं चाहता हूं उसको फ्री का स्पेस दिल में काहे के लिए दूं। भूलना इसलिए चाहिए कि जिसने हमें दुख दिया है, जो हमको अच्छा ही नहीं लगता है, उसको दिमाग में सारे समय उठा के क्यों घूमे मुफ्त में। Why to give a free space to a person we don't like? भाई मुफ्त में क्यों जगह दें, भगवान के रहने की जगह है, नहीं देनी चाहिए। तो ये फिर भी इंटेलेक्चुअल लेवल है, लेकिन उसके लिए प्रार्थना करना ये भक्ति का लेवल है। किसी ने हमें दुख दिया है फिर भी उसके लिए प्रार्थना करनी, भगवान इसका कल्याण हो। प्रहलाद महाराज को मारने के लिए छंड अमरक ने जब कृत्य बना के भेजी तो कृत्या प्रहलाद को मार नहीं सकी, वापस जाके संडामर्क मर गए। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं हमारे गुरुजनों का मृत्यु हो गया, भगवान अगर जिन्होंने मुझे पहाड़ से फेंका, जहर पिलाया, मारने का प्रयास किया, उनके प्रति अगर मेरा दोष भाव नहीं हो तो हमारे गुरु के बच्चे जीवित हो जाएं। और दोनों वापस जीवित हो गए। तो प्रार्थना किया, उसको वापस जीवित किया प्रहलाद महाराज कि मैंने जो मेरे मारने वालों को बुरा नहीं माना, ऐसा अगर मैंने किया है, मेरा भेदभाव किसी से नहीं है, तो गुरु के बच्चे जीवित हो जाएं। तो ये वैष्णव, ये भगवान श्री कृष्ण की शैली है। कहते कौरवों पांडवों के युद्ध में मैंने पक्षपात नहीं किया है तो परीक्षित जीवित हो जाए। अब कौन कहता है, कानूवल तो अर्जुन के सारथी बने हुए थे, बोला अर्जुन का सारथी था लेकिन सामने भीष्म देख रहा था, दर्शन भीष्म को हो रहा था, अर्जुन तो पीठ में बैठा हुआ था, तो लाभ तो ज्यादा भीष्म को हुआ है। तो मैंने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया है, सबका उद्धार किया। तो ये स्थिति, भगवान और भगवान के भक्त दूसरे के दोष को भी उसकी प्रार्थना करते हैं कि भगवान इसको सुधार दे। तो ये बहुत ऊपर का स्तर है। इस स्तर के ऊपर आने के लिए अभ्यास, इसलिए 3 जन्म लगे इसको अभ्यास करने के लिए। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।